ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इस बार आप सब ने भट्टी ज्ञान सरोवर में की है, पिछले साल शायद पांडव भवन में की थी ना। हाँ, उस समय रमेश बहन भी आई थी शायद, नहीं? पर अभी अभी उनसे मुलाकात हुई थी कुछ दिन पहले, मीटिंग में जब आई थी तो बहुत अच्छे चांस आपने लिए हैं। पांडव भवन में भी भट्टी की है, अभी ज्ञान सरोवर में भट्टी कर रहे हैं, क्योंकि पांडव भवन इस समय नहीं तो भट्टियां रखी थी परंतु सब कैंसिल करनी पड़ी, कारण कि वहाँ रिपेयर वर्क बहुत चल रहा है, बहुत पुराने मकान हो गए हैं तो उनका रिनोवेशन सारा हो रहा है, तो इस साल भट्टियां नहीं रखी है। लेकिन यहाँ बहुत अच्छा मौका मिला है आपको, और लक्ष्य तो बहुत ऊंचा रखा है कि हमें संपूर्ण बनना है। इसी यही बैठी है ना, संपूर्णता की ओर। तो संपूर्ण तो हम बनेंगे जरूर, दो रूप से संपूर्ण बनेंगे, एक है प्यार, दूसरा है मार। कोई बच्चे से काम करवाना है तो पहले उसको प्यार से कहेंगे, और अगर प्यार से नहीं मानता है तो मार भी देनी पड़ती है। तो भगवान भी दो तरीके अपनाते हैं, बच्चे सबको पावन बन घर जाना है, या तो प्यार से पावन बनो या तो सजाओं से बनो। और प्यार से बनने का तरीका क्या है, याद, मुझे याद करो तो तुम्हारे सब विकर्म विनाश होंगे और तुम मेरे पास चले आएंगे, और फिर नहीं किया तो फिर सजाएं खाकर भी मेरे पास आना ही है, क्योंकि सबको मैं ले जाऊंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। तो बाबा ने बहुत सुंदर रीति बताई है कैसे पावन बनना है, योग बल से, भाई भाई की दृष्टि से, आत्म अभिमानी स्थिति से और दैवी गुणों की धारणा से, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देने से, अपने जीवन में ये सारी धारणाएं उतारने से हम अपनी उन्नति कर सकते हैं। और यहाँ हमें उसी अनुसार संपन्न और संपूर्ण बनना है, सर्व गुणों में संपन्न बनना है, कोई भी गुण की कमी न रह जाए। तो सर्व गुणों में संपन्न बनना है, और 16 कला माना सभी कलाओं में संपूर्ण बनना है। तो सर्व गुण संपन्न और 16 कला संपूर्ण। तो ये कलाएं कौन सी है, पवित्रता की कलाएं, जैसे चंद्रमा पूर्णमासी के दिन संपन्न भी होता है और संपूर्ण भी होता है, बाकी दिन तो आधा होगा, तीन हिस्सा होगा, छोटा होगा, अलग अलग हो उसका उसका रंग रूप होगा, लेकिन पूर्णमासी के दिन संपन्न माना पूरी लाइट होगी उसकी, पूरी लाइट, और संपूर्ण होगा यानी गोलाकार होगा, टोटल गोल, और दिनों में टोटल गोल नहीं होता है, पूरी लाइट और पूरा गोल। तो पूरी लाइट माना संपन्न भरपूर, और गोलाकार कंप्लीट वो है संपूर्ण। तो दोनों बातों में हमें एक तो संपूर्ण बनना है, दूसरा संपन्न बनना है, पवित्रता की कलाओं में संपूर्ण बनना है और सभी गुणों में संपन्न बनना है। और उसका मूल आधार है चारों ही सब्जेक्ट्स जो बाबा हमें सिखाते हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। जितना हम ईश्वरीय पढ़ाई पर ध्यान देंगे, अच्छे स्टूडेंट बनेंगे, ऑटोमेटिकली बाबा कहते हैं तुम भविष्य में ऊंच पद पाएंगे। जितना योग युक्त होंगे उतना सजाओं से बचेंगे। जितनी जीवन में धारणाएं होगी उतना हम आगे बढ़कर अपने मंजिल तक पहुंचेंगे। और जितनी सेवा करेंगे, अनेकों की दुआएं लेंगे, उतना हमारा जो अपना पुरुषार्थ होगा वो सहज हो जाएगा, क्योंकि दुआओं से अधिक हम आगे बढ़ेंगे। कहते ना, या कुछ दवा कुछ दुआ, तो बीमारी ठीक करने के लिए या तो दवा चाहिए, परंतु दवा से ज्यादा दुआ काम करती है, दवा इतना काम नहीं करती है। तो बाबा भी हमें कहते हैं करो सेवा तो मिले मेवा। तो मेवा मिलेगा माना दुआएं मिलेगी, खुशी मिलेगी, शक्ति मिलेगी, है ना? गीत भी सुना ना, बनो महान करो कल्याण। तो महान कैसे बनेंगे जब कल्याण करेंगे अपना भी और सर्व का। तो आज जो आपका विषय है वो है महानता के लिए क्या करना होगा, निर्माणता लानी होगी। नम्रता से ही हम ऊंचे उठेंगे। जीवन में जितनी नम्रता होगी उतना ही हम महान बनेंगे। तो नम्रता का ऑपोजिट क्या है, अभिमान। मनुष्य जितना आगे बढ़ता है, सांसारिक उपलब्धियां उनको मिलती है, भौतिक प्राप्तियों से वो भरपूर हो जाता है, तो मान शान इज्जत महिमा मर्तबा बहुत कुछ उसे मिल जाता है, लेकिन उसे उस समय संभालना होगा अपने आप को, क्योंकि जितना ही वो ऊंचा चढ़ता है उतना ही उसको नम्र बनना पड़ेगा। अगर ऊंचा चढ़ रहा है पर नम्र नहीं बनता तो क्या परिणाम होगा, वो लंबी खजूर की तरह होगा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे लंबी खजूर। क्या फायदा उस खजूर के पेड़ का, बड़ा तो बहुत हो गया, क्यों उसका कोई फायदा नहीं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे लंबी खजूर, पंथी को छाया न दे और फल लागे अति दूर। कोई पंथी आए, कोई रास्ता भटका हुआ हो और थका हुआ हो तो खजूर के पेड़ के नीचे थोड़ी बैठेगा, वहां उसको छाया नहीं मिलेगी। तो कौन से पेड़ के नीचे बैठेगा, वो आम के पेड़ के नीचे, क्योंकि आम का पेड़ जितना भरपूर होता जाता उतना झुकता है, इसीलिए आम के पेड़ का मिसाल दिया जाता है, वो छाया देता है और आम भी देता है। लेकिन खजूर का पेड़ पंथी को न छाया दे और फल लागे अति दूर, उनका फल तो इतना ऊपर है कौन चढ़ेगा। बहुत उसमें गुण है किसी व्यक्ति में, जिन गुणों के कारण वो इतना आगे बढ़ा, लेकिन अभिमान आ गया साथ साथ, और वो अभिमान उसको एक दिन गिराएगा, अवश्य गिराएगा। इसीलिए खजूर के पेड़ के लिए दूसरी भी कहावत है, क्या कहावत है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे लंबी खजूर वो तो है ही है, परंतु साथ साथ अगर इतना ऊंचा चढ़ गए और गिरे तो चकनाचूर, ये है लंबी खजूर। क्योंकि चढ़ तो गए परंतु उतरना कई बार मुश्किल होता है। कई लोग चढ़ तो जाते हैं लेकिन उतरने में भी उतने ही माहिर होने चाहिए, वहां बैठे थोड़ी रहेंगे। तो चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस और गिरे तो चकनाचूर, ये है लंबी खजूर। इसलिए जितना हम आगे बढ़ते हैं जीवन में, इच्छाएं बहुत उत्पन्न होती है, महत्वाकांक्षी बन जाते हैं, नाम मान शान महिमा की इच्छा होती है। और अगर अपने आप को भेंट करते हैं दूसरों के साथ, तो अगर मेरे से और ऊंचा है तो उनसे ईर्ष्या पैदा होती है, ये इतना ऊंचा कैसे चढ़ा, मैं इनसे भी आगे जाऊं। और उनसे भी आगे जाने का प्रयास में दूसरे को गिरा करके ऊंचा चढ़ने का प्रयास करते हैं। अब दूसरे को गिरा करके ऊंचा चढ़ेंगे तो क्या होगा? अगर आपको ऊंचा चढ़ना है तो आप अपनी मेहनत से चढ़ो ना, दूसरे को गिरा कर थोड़ी चढ़ना है। जैसे कहते हैं ना, अगर कोई लकीर है उस लकीर को छोटा बनाना है बिना काटे उसे, तो उसको छोटा कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? उसके नीचे उनसे बड़ी लकीर बनाओ। अब उनसे बड़ी लकीर बनाएंगे तो वो पहली वाली लकीर अपने आप छोटी हो जाएगी, उसको बनाया नहीं हमने छोटा। तो किसको गिरा करके हम ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं। कईयों का ये कार्य होता है, ईर्ष्या होती है तो उनको गिराने की कोशिश करेंगे, उनकी ग्लानि करेंगे, उनकी निंदा करेंगे, उनकी चुगली करेंगे, उनको बुरा भला कहेंगे, अपमान करेंगे। अब वो इतना महान और हम उनकी ग्लानी करके हम समझते हैं कि इनसे इनका नाम बदनाम करेंगे तो हम ऊंचा चढ़ जाएंगे, तो ईर्ष्या होती है। तो किसी से भेंट किया, अपने आप को भेंट कर ली, तो या तो अभिमान आ गया, या तो अगर भेंट दूसरे रूप से की मेरे से कम है तो भी अभिमान वश करेंगे। ये क्या अपने आप को समझता, ये बुद्धू है, इसको क्या पता, मैं तो होशियार हूं, इसको तो कुछ भी पता नहीं है, इसको ये तो बेसमझ है। तो चलो बेसमझ होगा भी तो थोड़ा होशियार कम है हमसे, लेकिन हम उनकी ग्लानी थोड़ी करेंगे, चलो ठीक है। लेकिन और उसमें भी अभिमान दिखाएंगे तो क्या होगा? तो वो भी तो अभिमान हुआ। और चलो बाबा कहते हैं कि ऊपर है आगे है तो अभिमान आता है नहीं, और अगर ऊपर है अभिमान के साथ साथ फिर अपने अंदर हीनता की भावना भी आती है ना, मैं कैसे बढ़ूं, ये तो कितना आगे चला गया। तो ईर्ष्या तो होगी लेकिन हीनता की भावना भी आएगी, मेरे से कम है तो अभिमान आएगा पर मेरे से आगे है तो हीनता की भावना आएगी, और हीनता की भावना के कारण भी हम दूसरे को गिराने की कोशिश करेंगे। मैं भी तो इन जैसा ही हूं, मैं भी तो इतना पुराना हूं, मैं तो वो भी एक अभिमान का ही रूप है। तो बाबा कहते अगर बड़ा बनना है, ऊंचा जाना है, तो जितनी आपकी महिमा होती जाए, आपका पद ऊंचा होता जाए, उतना ही आप नम्र बनो, क्योंकि ये नम्रता ही महानता लाएगी। अगर नम्रता नहीं है तो महानता तो कभी नहीं आएगी। तो महानता का आधार ही है नम्रता। इसलिए देखो जब बड़े बड़े तूफान आते हैं तो जो पेड़ झुकते हैं वो तो बच जाते हैं, और जो पेड़ झुक नहीं सकते, खजूर का पेड़ झुक थोड़ी सकता है, वो तो लंबा लंबा ही होता है, तो जो पेड़ झुक सकते हैं वो तो बच जाते हैं, और जो नहीं झुक सकते हैं वो उनका क्या होता है, वो गिर जाते हैं, तूफानों में गिरे हुए मिलते हैं, क्योंकि वो झुक नहीं सके। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके जो हड्डियां बहुत कम नरम होती है, सख्त नहीं होती है, अगर गिरते भी हैं ना तो कोई हड्डी वड्डी थोड़ी टूटती है, परंतु अगर कोई बुजुर्ग गिर जाए तो उनकी हड्डियां बहुत रिजिड होती है ना, बहुत कठोर हो जाती है, तो फट से उनको क्रैक हो गया और उनका उनकी हड्डी टूट जाती है और कैल्शियम की कमी हो जाती है। और बच्चा तो देखो कितनी बार गिरता है, थोड़ी कुछ होता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं जितने हम नम्र बनते हैं उतने महान बनते हैं, और उसी के आधार से हम संपूर्ण बनते हैं, क्योंकि उसी से ही दुआएं मिलेगी। अगर अभिमान दिखाएंगे तो दुआएं कौन देगा, कोई दुआएं नहीं देगा, भले सामने से आपकी महिमा करेंगे लेकिन पीठ के पीछे आपकी ग्लानी करेंगे। ये तो देखो कितना अभिमान है उसको, क्या समझता है अपने आप को, क्या समझता है अपने आप को, ये भी कहेंगे तो आपके पीठ के पीछे ग्लानी करेंगे। इसीलिए अपना मान चाहने वाले वो जरूर समझते हैं, या समझना चाहिए कि अगर कोई आपको मान देता है ये आपकी बढ़ाई नहीं है, लेकिन देना पड़ता है क्योंकि आप आगे हैं, पर अंदर में वो कितना आपके प्रति रिस्पेक्ट रखता है वो आपके व्यवहार से होता है, आपके आप बड़ी स्टेज या आपका स्टेटस से नहीं होता है रिस्पेक्ट, आपकी अंदर की स्थिति से रिस्पेक्ट मिलता है, सम्मान मिलता है। कई बाहर से बहुत महिमा करते हैं और पीछे से ग्लानी करेंगे। तो किसी ने बहुत अच्छी कहावत कही है, भगवान मेरे दोस्तों से बचाओ, दुश्मनों से तो मैं निपट लूंगा, ऐसे भी कहा। दोस्तों से क्यों बचाओ, क्योंकि जो मेरे दोस्त कहलाते हैं मैं उनके प्रति पैसा खर्च करता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं, मानो तो दोस्त चलो बन गए, परंतु उस समय तो खूब महिमा करेंगे, वाह आप तो बहुत अच्छे हो, आप तो बड़े दिल वाले, आप ये हो, आप वो हो, पर और उस समय अभिमान दिखाया और आपके पीठ के पीछे आपकी ग्लानी करेंगे, हाँ क्या अभिमान है उसको, क्या समझता अपने आप को, पैसा है तो क्या हुआ, भले हमारे पास पैसा नहीं है परंतु हम उनसे अच्छे हैं, उनके अंदर देखो ये बुराई है, ये बुराई है, और उनके सामने जाकर महिमा करेंगे। तो किसने कहा है कि भगवान मेरे दोस्तों से मुझे बचाओ, दुश्मनों से तो मैं निपट लूंगा, क्योंकि दुश्मनी जो करता है मना वो गलत बोलता है, ग्लानी करता है सामने से, तो जो ग्लानी सामने से करता है वो वास्तव में हमारा सच्चा मित्र है। इसीलिए कहा ना, निंदक नेरे राखिए, निंदक जो क्रिटिक है यानी जो आपकी ग्लानी करते हैं आपके सामने, पीठ के पीछे नहीं, पीठ के पीछे किया तो ये तो ऐसे हुआ जैसे हवा में किसी का किया, किसने देखा किसने सुना, उस तक फिर वो पहुंचेगा जरूर उस तक, उस समय नहीं पहुंचेगा, और वो समझेगा वाह इसने मेरी कितनी प्रशंसा की, पर कुछ समय के बाद अगर उसी ने उनकी ग्लानी की तो प्रशंसा की तो वो अभिमान चढ़ गया, और थोड़ी सी ग्लानी की क्योंकि अंदर में तो ग्लानी भरी है बाहर से प्रशंसा की, तो वो जैसे फुगा खूब बलून बहुत सुंदर दिखा जब उसमें हवा भरी और जरा सी सुई लगी और क्या होता है, फट से हवा निकल गई, उसका गुब्बारा वो फिस हो गया एकदम, उसकी सुंदरता खत्म हो गई। तो इसीलिए बाबा कहते अगर आपकी कोई महिमा करे तो भी महिमा स्वीकार मत करो, स्वीकार मत करो। इसीलिए बाबा मुरलियों में क्या कहते हैं कि आपको अगर इतनी आपकी है टैलेंट्स है, आपकी विशेषताएं है, ये जो भी है, ये दिया किसने, किसने दिया भाई? हाँ, बाबा ने दिया। तो महिमा करो तो किसकी करो, मेरी करो या बाबा की करो? बाबा की करो। हाँ, इसलिए अगर कोई आपकी महिमा करे, आप अच्छा भाषण करते हैं, आप बहुत अच्छी सेवा करते हैं, बहुत अच्छा कार्य करते हैं, तो चलो, कई तो प्रशंसा के भूखे होते हैं। सेवा करके आएंगे, बहुत मेहनत की आएंगे, सेंटर पर आएंगे, कहेंगे बहन जी ने तो पानी भी नहीं पूछा, इतनी सेवा करके आया मैं। तो माना प्रशंसा की महिमा ना, आपने बहुत सेवा की, बैठो बैठो भोजन करो, पानी पियो, और समझो टीचर ने पूछा ही नहीं और सेवा करके आ गए, तो अंदर में थोड़ी नाराजगी आती है, आती है नाराजगी, क्या समझते हो? आती है। जो समझते बिल्कुल नहीं आती, हाथ उठाओ, देखो थोड़ी उठा रहे हैं बाकी। हाँ, तो नाराजगी आना क्या सिद्ध करता है? कि आप प्रशंसा के भूखे, प्रशंसा के भूखे माना अभिमान है, मैंने इतना किया और मेरे को किसी ने पूछा भी नहीं। अरे बाबा तो देख रहा है ना, बाबा ने तो देखा ना। इसीलिए गीता के अंदर बड़े सुंदर शब्द है, कर्मणे वाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन। आप श्रेष्ठ कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल ईश्वर देगा, जरूर देगा। अब आपने प्रशंसा की भी मांग की या इच्छा रखी, चलो प्रशंसा हो गई, वो जो आपने अच्छा कर्म किया वो फल तो उस समय मिल गया आपको, आगे तो मिलेगा नहीं, खत्म पूरा हुआ, प्रशंसा के रूप में मिल गया। लेकिन अगर कोई करे, ये भी अच्छी बात है, भले करे, लेकिन वो स्वीकार नहीं करो। आप ये सीधा कहो कि हम मैंने क्या किया तो बाबा ने कराया, हाँ बाबा ने कराया, महिमा करो तो बाबा की। फिर अगर कोई दो दिन के बाद ग्लानी करे तो ग्लानी भी आप स्वीकार नहीं करेंगे, आप कहेंगे ग्लानी की, मेरी क्या की, मैं तो बाबा की याद में किया, जितना हो सका मैंने किया। चलो तो ग्लानी भी को भी आप ग्लानी महसूस नहीं करेंगे, आप कहेंगे मेरा क्या, बाबा को किया, हाँ मैं तो निमित्त हूं। तो इसीलिए न ग्लानी स्वीकार की न महिमा स्वीकार की, पर महिमा स्वीकार की तो ग्लानी भी स्वीकार करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों दोनों साथ में है ना। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं बच्चे नम्र बनो। हमारी दादी, हमारी क्वीन मदर थी, जो पुरानी है उनको जानते होंगे, बड़ी दीदी की लौकिक माताजी थी, बड़ी दीदी थी ना मनमोहिनी दीदी, उनकी लौकिक माताजी थी, वो भी यज्ञ में ही थी, पर बहुत बड़े घर की थी, पर इतनी स्वीट, इतनी स्वीट, इतनी निर्माण। तो कई टीचर्स उनके पास जाते थे, उनको बहुत शिक्षा देती थी वो टीचर्स, उनको दादी को बहुत सारी किसकी कंप्लेन, किसकी कंप्लेन, मतलब कुछ भी अगर होता था तो कई वो उनको सुनाती थी। तो क्वीन मदर बाबा ने उसका नाम रखा था, सुंदर भी थी, इतनी बड़ी आयु होते हुए भी बहुत रॉयल थी, क्योंकि बड़े खानदान की थी। तो हमेशा वो सब टीचर्स को तो खास बहुत शिक्षा देती थी, क्या कहती थी, झुक झुक मारो मारो सिख सिख, झुको झुको झुको, मरो 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 और सीखो सीखो। एक बार बाबा की मुरली में भी आया था, कई कहते हैं क्या मुझे ही झुकना है, मुझे ही मरना है, हाँ खाली मैं ही झुकू, मैं ही मरू, और दूसरे तो देखो मौज कर रहे हैं और मुझे ही झुकना पड़ता है, मुझे ही ये करना पड़ता है, हाँ मैं ही करूं, दूसरे तो कोई मदद करते ही नहीं है, तो सेवा भी करेंगे पर आधे दिल से करेंगे, तब उसका क्या फल मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। जो भी सेवा मिले खुशी से करो ना, ये बाबा की सेवा है, इसलिए हम अष्ट शक्तियों में एक शक्ति है सहयोग शक्ति, है ना, देखते हैं ना। तो सहयोग शक्ति का मतलब क्या है, कई लोग हम लोगों से पूछते हैं ना, जब आते हैं यहाँ, आप लोगों का ये कार्य कैसे चलता है, कैसे चलता है, यहाँ कोई डिक्टेटर तो है नहीं, ये करो ये करो ये करो, कोई बोलने वाला नहीं है, सब अपने आप करते हैं, टाइम पर भोजन मिल जाता है, टाइम पर सब कुछ होता है, टाइम पर क्लास होता है, सब कोई किसको ऑर्डर तो करता नहीं है, करते है क्या, अभी जाओ अभी तुमको क्लास कराना है, अभी जाओ हाँ तुमको लाइट जलानी है, जो कहना पड़ता है, उनको पता है ये मुझे मेरी सेवा है। ड्यूटी शब्द भी बाबा कहते नहीं, सेवा। तो कई कहते हैं ये कैसे चलता है, तो हम कहते हैं यहाँ हर एक का कार्य बटा हुआ है, उनकी अपनी सेवा उनको पता है, लेकिन कोई किसी से ईर्ष्या नहीं करता है कि ये भाषण कर रही है मैं भी करूं भाषण, हाँ ये क्यों इतना भाषण करती है मैं नहीं कर सकता क्या, मेरे को तो बर्तन ही मांजने हैं क्या, लेकिन नहीं, हर कार्य महान है, हर कार्य महान है। तो इंग्लिश में कहते हैं एवरी टास्क इज अ डिग्निटी, क्यों हर कार्य महान है, क्योंकि ये भगवान का कार्य है, हमारा तुम्हारा अपना तो कुछ है नहीं, कुछ लेके तो जाना नहीं है, यही सेवा कर रहे हैं, यही भाग्य बना रहे हैं, भविष्य में बाबा बहुत देंगे। कई लोग आते हैं ना, हम लोगों का शिविर कराते हैं हम, तो एक समझो एक डेढ़ डेढ़ घंटा तक चलो क्लास कराया, तो उसके बाद आएंगे और कहेंगे बहन जी आपने बहुत अच्छा क्लास कराया, ये 100 रुपया लो। हम कहते हैं हम 100 रुपये के लिए आपका क्लास नहीं कराया। तो एक किसी ने पूछ लिया, तो बहन जी आपको तनख्वाह कितनी मिलती है, आपको तनख्वाह कितनी मिलती है, सोचा होगा ना जैसे लेक्चर्स देते हैं ना बाहर, तो कुछ ना कुछ मिलता है, चेक मिल जाता है कई बार क्योंकि संस्था के नाम पर मिलता है, तो आपकी तनख्वाह कितनी है। तो हमने उनको जवाब दिया, हमको तो इतना भगवान देता है जो 21 जन्म तक हम खाएंगे। कितनी तनख्वाह मिलती है, कितनी मिलती है, एक जन्म तो क्या 21 जन्म। ये 100 रुपया देके हम अपना कहेंगे भाई पूरा हुआ, मैंने 1 घंटा भाषण किया, इसलिए हम लेते नहीं। पांडव भवन का मैं किस्सा बताऊं, एक सेवाधारी भाई सुखधाम में वो सेवा करता था, तो कोई VIP आया हुआ था सुखधाम में वो रहा, तो उस सेवाधारी भाई ने उनकी बहुत सेवा की, माना हर चीज की मदद की जो भी उसको चाहिए था। तो जाने से पहले तो जैसे ना होटल में टिप्स देते हैं ना, भाई लो ये एक्स्ट्रा खाना खाया एक्स्ट्रा, या किसी को भाई ऐसे ही दे देते हैं, तो उसने भी उस सेवाधारी को 100 रुपया दिया, कहा आपने मेरी बहुत सेवा की है आप ये लो, तो उसने मना कर दिया, हम ऐसे नहीं लेते, मेरा भी सब कुछ बाबा का है, मैं आपका लेकर क्या करूंगा, ऐसे कह दिया उसने, आपका लेकर मैं क्या करूंगा, मेरा भी तो सब बाबा का ही है, आपको चाहिए बाबा की भंडारी में डालो। उस व्यक्ति पर इतना प्रभाव पड़ा, जो वो वापस गया सेवा केंद्र पर गया और उसने ये अपना अनुभव सुनाया कि देखो वहां सब कैसे निस्वार्थ रूप से सेवा करते हैं, निस्वार्थ रूप से सेवा, क्योंकि हर कार्य महान है, लेकिन ये महानता का आधार क्या है, फिर वही बात, महानता का आधार क्या है, निर्माणता, नम्रता, हमारा व्यवहार कैसा है, हमारे बोल में वो नम्रता है या नहीं है, हमारे बोल में मिठास है या नहीं है, क्योंकि बोल से पता चलता है ये अभिमान है इसमें या नम्रता है। कईयों के बोल ऐसे होते जितना कितना अभिमान दिखाते, पता नहीं क्या समझते अपने आप को, लेकिन वो अगर अभिमानवश कुछ बोलते हैं, पता चल जाता है, वो वाइब्रेशन आते हैं ये अभिमानवश बोल रहा है, तुमको क्या मालूम, मैं जानता हूं, हाँ तुम तो बेसमझ, मतलब कुछ भी बोल देंगे। लेकिन जो सचमुच महान है ना, वो ऐसे शब्द नहीं बोलेगा, सबको रिस्पेक्ट देगा, सबको रिस्पेक्ट देगा। हमारी दादियां कैसी थी, सबको रिस्पेक्ट देती थी। मम्मा तो इतना रिस्पेक्ट देती थी जो मम्मा छोटे बच्चे को भी तुम नहीं कहती थी। हाँ, बाबा ने एक बार मुरली में कहा था ना, हाँ तुम ऐसे, तुम ऐसे, तुम ऐसे, तू 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 करते रहते हैं। लेकिन जो सचमुच महान है वो आप कहेगा। तो छोटे बच्चे को भी कहती थी आपका नाम क्या है, ऐसे नहीं कहती तुम्हारा नाम क्या है ना? छोटे बच्चे को भी इतना रिस्पेक्ट देती थी। तो छोटे बच्चे को भी रिस्पेक्ट देना आप कह करके, आप सोचो, तो बड़ों को तो जरूर आप कहते होंगे। मम्मा देखती थी कि कोई माता है, चप्पल पहना हुआ है और ठप 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 करके आ रही है, तो मम्मा उसको बुलाती थी। मम्मा कहती थी देखो धरती को भी दुख मिल रहा है, धरती को भी दुख मिल रहा है, क्योंकि ठप 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 धरती को ठप ठप करके, मतलब चप्पल जूता ऐसा तो जोर से पांव चलाती होगी। मामा के जो कदम थे इतने सॉफ्ट थे, इतने सॉफ्ट थे, पता भी नहीं चलता था। बाबा भी ऐसे ही थे। हाँ तो ऐसे नहीं कहा तुम कैसे चलती हो, तुमको अकल नहीं है चलने की, ऐसे भी बोल सकते ना। लेकिन नहीं, मामा ने कहा देखो धरती को भी दुख होता है, तो थोड़ा आवाज नहीं करो, क्योंकि सबका ध्यान जा रहा था, सबका ध्यान, जब कोई बस जैसे चल रहा है ध्यान जा रहा, तो सबका ध्यान जाना माना उसकी आवाज, उसके पैर के चप चप चप्पल से, तो ये भी तो थोड़ा अभिमान दिखाना होगा ना। हाँ कोई चलते ना टिप टॉप चलते हैं, इतनी बड़ी हील पहनते हैं, ठक 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 करके चलते हैं, बड़ा अभिमान दिखाते हैं। तो बाबा हमें क्या कहते हैं, बच्चे नम्र बनो। अब कैसे, आज की जो आज का जो वरदान था वो इसी के आधार पर था, तो इसी से कैसे वरदानी मूर्ति बनते, बाबा ने कैसे वरदान को मिक्स किया, मिलाया नम्रता के साथ। तो वरदान अपने आप मिलता है, दुआएं अपने आप मिलती है, न वरदान मांगा जाता है न दुआएं मांगी जाती है, दोनों में मेहनत नहीं है। अगर दुआ मिली वरदान मिला, इसमें मेहनत नहीं है, क्योंकि बाबा से मोहब्बत है इसीलिए वो मिला। पर वरदान को हम कैसे यूज करें, कैसे यूज करें, इसकी भी अंदर में इसका भी चिंतन चलना चाहिए। वो नम्रता का भी रूप सामने तब आएगा जब उसका चिंतन चलेंगे, वरदान मिला। कई कईयों को बहुत अच्छे अच्छे वरदान मिलते हैं, लेकिन उनका उनको अभिमान आ जाता है कि बाबा ने मुझे वरदान दिया, भगवान का मैं बहुत प्रिय हूं। लेकिन वो वरदान का सदुपयोग नहीं है। वरदान मिला माना वो हमको झुकाता है, नम्र बनाता है। मैं आपको अपना मिसाल दूं, अभी जैसे कहा ना इनको, इन्होंने कहा कि बाबा ने इनको वरदान दिया था कि आपकी जिबा पर सरस्वती का वास है, ये बाबा ने मुझे कहा था, ज्ञान की वीणा बजाने वाली सरस्वती आपकी जिबान पर है, ये बाबा ने मुझे वरदान दिया था। अभी ये वरदान तो बड़ा रेयर किसको मिलता होगा, पता नहीं किसी और को ऐसे मिला या नहीं, पर अव्यक्त बाबा ने मुझे ये वरदान दिया था। तो जब ये वरदान दिया मैं तो अचंभित हो गई, बस बाबा को देखती रही, हा? और बहुत प्यार से टोली दी और जैसे हाथ प्यार से पकड़ा, प्यार की दृष्टि दी, क्योंकि मैं हैदराबाद गई थी, हैदराबाद नागार्जुना फर्टिलाइजर्स में प्रोग्राम रखा था और वहाँ के एग्जीक्यूटिव्स के लिए प्रोग्राम था, तो वो बहुत प्रभावित हुए थे और वो भी माउंट आबू आए थे, तो हैदराबाद के थे तो हिंदी नहीं इतना जानते थे, इंग्लिश जानते थे, तो मैं इंग्लिश में उनके उनकी ट्रांसलेशन कर रही थी, बाबा जो उनको सुना रहे थे। तो जब बाबा ने उनको सुनाया, फिर टोली दी, मैं ट्रांसलेशन करती रही, और लास्ट में मैं सोचा मैं अभी मैं भी बाबा से टोली ले लूं। अब एक बाबा के सामने जाकर माना सामने ही थे और बाबा उनको वरदान दे रहे थे, तो लास्ट में मैं जब आई तो बाबा के आगे मैंने हाथ किया तो बाबा ने मुझे दृष्टि दी, और दृष्टि देकर जो टोली हाथ में दी और हाथ पकड़ा बहुत प्यार से, और ये वरदान दिया कि ज्ञान की वीणा बजाने वाली सरस्वती आपकी जुबान पर है, ये बाबा ने कहा। अब मैं तो सुन करके हैरान हो गई कि बाबा ने ये वरदान दिया, तो उस समय तो ये बात पूरी हो गई। लेकिन जैसे मैं नीचे आई तो अपनी बहनें थी, टीचर्स बहनें और भी थी, तो उन्होंने कहा अरे वाह शिलू बहन, आपको तो भगवान ने ऐसा वरदान दे दिया, तो इस जन्म में आप सरस्वती हो तो आगे अगले नेक्स्ट जन्म में आप लक्ष्मी जरूर बनेगी, मतलब ऐसे ऐसे हंसी में मना हंसी में। लेकिन मेरे मन में बहुत संकल्प चलने लगे। मैंने सबसे पहला ये संकल्प किया, भगवान ने इतना बड़ा वरदान हमें दे दिया, अवश्य भगवान हमसे कुछ चाहते हैं, किसी से कुछ कार्य करवाना है, कोई बच्चे से भी, तो बच्चे को क्या कहेंगे, बेटा तुम बहुत अच्छे हो, तुम ये कर सकते हो, तुम बहुत उनकी महिमा करेंगे। तो जरूर बाबा को मुझसे कुछ ऐसा महान बड़ा कार्य करवाना है, इसलिए बाबा ने पहले से तैयार किया, क्योंकि उसके थोड़े समय बाद टेलीविजन टीवी का प्रोग्राम मिला, जो पहली बार ब्रह्मा कुमारियों को जी टीवी पर निमंत्रण मिला, बिल्कुल वो वरदान मिला। और वो उसके बाद पहला निमंत्रण मिला और दादी जी ने मुझे कहा कि आप जाओ और टेलीविजन में आधा घंटा वैल्यूज पर लेक्चर देना है। तो खैर, तो मैंने सोचा बाबा को मुझसे बहुत बड़ा कार्य करवाना होगा, अब क्या कार्य कराना है पता नहीं। फिर दूसरा संकल्प आया कि अगर भगवान ने मुझे ये वरदान दिया है कि आपकी मुख पर सरस्वती का वास है, तो इस मुख से, इस जुबान से मुझे कभी भी कोई भी ऐसा बोल नहीं बोलना है जो सरस्वती का बोल न हो। आप सोचो इतना दूर तक जाना है, भगवान ने ये वरदान दिया है। कई बार ऐसे मुख से कैसे शब्द निकल जाते पता भी नहीं, तुम पागल हो, तुम फलाना हो, तुम ये हो, क्या क्या शब्द निकलते और किसको दुख पहुंचता है, जैसे तीर लग कर के वो चुभता है, दुख देते हैं हम अपने शब्दों से, दुख देते हैं हम। देखते हैं ना दुनिया में आधे जो झगड़े होते हैं ना वो बोल से होते हैं, बोल से तुमने मुझे ऐसे क्यों कहा, अच्छा कह दिया तो क्या हुआ, तुमने भी तो ये कहा, तुमने हाँ, आपस में लड़ते रहेंगे और नतीजा क्या होता है उसका। इसका मूल कारण ये है नम्रता की कमी, और नम्रता की कमी कैसे पता चलती है, बोल से, शब्दों से पता चलता है। तो जितना हमारे अंदर मिठास होगा उतनी ही फिर नम्रता होगी, उतने ही हमारे बोल पर कंट्रोल होगा। तो ऑटोमेटिकली जो आज बाबा ने कहा ना निर्विकल्प स्थिति, निर्विकल्प, कोई भी ऐसा बुरा संकल्प मन में आएगा तो वो मुख से निकलेगा, क्योंकि जैसे हमारी सोच होगी वैसे ही बोल निकलेंगे। तो जो हमें शब्द बोलना नहीं है वो सोचना भी नहीं है, पर पहले सोच में आएगा फिर बोल में आएगा। तो क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, बाबा हमें सब प्रकार की शिक्षा देते, क्योंकि हम जो देंगे हमको वही मिलेगा। हम सोचे हम सबको रिस्पेक्ट दे, मना सब हमको रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, सब हमसे प्यार से बात करे और मैं सबसे अभिमान से बात करूं, तो मैं अभिमान से बात करूंगी तो वो कोई कम है क्या, वो भी अभिमान से बात करेगा। और फिर क्या होगा, जैसे बांस की लकड़ियां, मैं भी अभिमानी वो भी अभिमानी, जंगलों में आग क्यों लगती है? ऐसे नहीं कि किसने दिया सलाई जलाई या सिगरेट जलाया या तभी आग लगी, नहीं, सूखी सूखा जंगल होता है उस पे बांस की लकड़ियां होती है और वो सीधी सीधी खड़ी होती है। जो हरी बांस की लकड़ियां होती है वो तो झुकी हुई होती है, लेकिन जो सूखी लकड़ियां होती है बांस की, वो इतना उनमें फ्रिक्शन होता है और जैसे ही हवा का झोंका आया आपस में टकराई और आग निकलती है ना, पता है उसको फ्रिक्शन कहते हैं, वो सूखे आपस में वो आग निकली। तो जंगलों को आग लग जाती है सूखे पेड़ों के कारण, वो खास बांस की लकड़ियों में। तो मनुष्य भी अभिमान के वश जो कर्म करता है तब उसका परिणाम क्या निकलता है, कुछ भी क्या निकलेगा। समझो किसने मुझे दो अपशब्द कहे और मैंने कहा तुम मुझे ये कहते हो, अच्छा तुम भी कोई कम हो क्या, तो मैंने चार अपशब्द उसको कहे। अब इसका मतलब मैंने वो दो अपशब्द स्वीकार किए ना, तभी तो चार अपशब्द कहे। अगर मैं वो दो अपशब्द नहीं स्वीकार करता तो चार अपशब्द कहने की क्या जरूरत है। तो मूर्ख हो, तो कहेगा अच्छा मैं मूर्ख हूं तो तू महामूर्ख है। नैले पर डेला, भाई नैला है, नैला फेंका तो अभी उसको हराना है, तो हम डेला फेंकेंगे तभी तो हरा सकेंगे ना। तो नैले पर डेला, तू शेर है तो मैं सवा शेर हूं, मैं कम हूं क्या तुम्हारे से, और झगड़ा चालू हो जाता है। और उसने तो केवल दो शब्द ही बोला था, पर मैंने चार बोला, फिर उसने आठ बोला, फिर मैंने सोलह बोला, वह लड़ाई झगड़ा चालू हो गया। फिर क्या किया उसने, मुझे थप्पड़ मारी और मैंने क्या किया उसको गिरा दिया। हाँ, उसने तो थप्पड़ मारी और जैसे गिरा दिया वो उसके नाक में से खून निकला, उसको सारा खून खून हो गया। अब जिसने जो दो गाली दी थी या क्या था वो तो मनुष्य भूल जाएंगे, लेकिन क्या देखा, अरे ये गिर गया, इसने गिराया इसको, अरे क्या समझता है या उसको कैसे क्यों गिराया, तो उसका नाम बदनाम होगा ना। भले शुरुआत गिरा जो उसने की मान लो, परंतु उसको जो पहला शब्द कोई होगा, लेकिन दूसरे ने उसको गिरा दिया और उसको चोट लगी, तो किसका दोष माना जाएगा, जिसने दो गाली दी या जिसने गिराया? वो दो शब्द वाला तो भूल, वो तो उसकी तो भूल माफ, क्योंकि उससे और बढ़कर 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 हुआ। मुझे याद है मैं स्कूल पढ़ती थी तब, तो मेरी एक सहेली थी, मैं ये बहुत किस्सा सुनाती हूँ, भूल नहीं पाती हूँ क्योंकि वो क्या परिणाम हुआ उसका। तो वो सहेली जो थी उसके पिता की दुकान थी, नेबर से हमारी दूसरी बिल्डिंग में रहती थी जहां मैं घर में रहती थी, स्कूल पढ़ती थी। तो एक दिन अखबार में आ गया, न्यूज में हेडलाइन, वन पैसा मर्डर, एक पैसे के कारण हत्या की। तो उस समय भारत में ये नए पैसे और पुराने पैसे दोनों चलते थे, चार आना माना 25 पैसा, तो चार आने भी चलते थे, दो आने भी चलते थे, दो आना माना 12 पैसा। हाँ, जो पुराने है वो जानते हैं, आप जो नए नए अभी छोटे हैं उनको पता नहीं है ये आना पैसा। हाँ, तो ये 16 आना ये सब उस समय चलते थे, हम छोटे थे स्कूल जाते थे उस समय, याद है। तो ये परिवर्तन हो रहा था, लेकिन दोनों करेंसी चलती थी। तो किसी ने, कोई ग्राहक आया और उसने दो आने की चीज ली, सस्ता ही तो थी, तो दो आने की चीज ली, तो दो आना माना 12 पैसा। तो उस दुकानदार ने 12 पैसा वापस किया, भाई दो आने की चीज ली 12 पैसा, तो दो आना वापस 12 पैसा। तो वो ग्राहक ने कहा नहीं, मैंने 25 पैसा दिया होगा, तो और दो आने की चीज ली तो हमको 13 पैसा वापस करो। आप सोचो 13 पैसा, उसने कहा 13 पैसा क्यों दूं, मैं तो 12 पैसा ही दूंगा, क्योंकि 12 पैसा मैंने दो आना, तो 12 पैसा 13 पैसा इसी पर झगड़ा हो गया। और फिर दुकानदार ने कहा अगर मैं सबको ऐसे 13 पैसा देता जाऊंगा तो मैं तो कंगाल हो जाऊंगा, अब 1 पैसे से क्या होता है। चलो सबने दूसरों ने भी ऐसे कहा होगा, पर इतना गुस्सा आया, वो भी लड़ने लग गए आपस में। आखिर क्या किया, वो जो दुकानदार था उसके पास बंदूक थी और बंदूक लेकर उसने उस ग्राहक की हत्या कर ली। अब 1 पैसा मर्डर, ये अगले दिन न्यूज आ गई। और वो बिल्कुल कौन था क्या था वो तो जैसे मैंने पढ़ा अखबार में, तो वो तो हमारे नेक्स्ट वो दूसरी बिल्डिंग का ही की दुकान थी और मेरे फ्रेंड की वो पिता था। तो उसके बाद हमने देखा, उसको तो पकड़ के ले गई जेल में जिसने मर्डर किया बंदूक लेकर के, वो ग्राहक तो मर गया लेकिन जेल में गया। फिर जेल में उसका कितना बुरा हाल हुआ, दुकान इसका खत्म हो गया, मकान खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया और एकदम कंगाल होकर के मरा। और क्या, 1 पैसे के कारण अभिमान। सोचो अभिमान कितना मनुष्य को गिराता है। अच्छा छोड़ो तो छूटो, दे दो ना, छोड़ो। लेकिन क्यों छोड़ो, क्यों क्यों जो बाबा कहते हैं ना, अभिमान के वश कहते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं नम्र बन जाओ ना, झुक जाओ। अरे क्या फर्क पड़ता है, उस समय आप झुक जाएंगे तो आपके ऊपर आगे फूलों की बरसात होगी। अब उस समय झुक जाओ। लेकिन क्या लोग क्या समझते हैं, मैं झुकूंगा तो लोग समझेंगे मैं कायर हूं। अरे कायर नहीं हो, ये सहन शक्ति है। तो जो व्यक्ति सचमुच महान है उसके अंदर सहन शक्ति भी होगी। इसलिए नम्रता ही महानता है, क्योंकि वो सहन करेगा, वो झुकेगा। हाँ कई कहते हैं कब तक झुके। हाँ झुकना है, मरना है, सीखना है, जो क्वीन मदर हमें कहती थी, खास टीचर्स को तो बहुत कहती थी। सबके लिए है। तो इसीलिए नम्रता का गुण कितना महान बनाता है। भले उस समय लगेगा कि ये हार गया, ये जीत गया, ये झुक गया, हाँ जरूर इसने कोई भूल की होगी, ओके मैंने भूल नहीं की, मैं क्यों झुकूं। चलो उस समय तो आप नम्र हो जाओ, आगे तो बात को मत बढ़ाओ। चलो वो नहीं होता, डीट है, ठीक है छोड़ो, पता नहीं किस जन्म का हिसाब किताब होगा। लेकिन हम भी पीछे पड़े रहेंगे तो हिसाब किताब तो बढ़ेगा ना, क्यों इसने मुझे ऐसे कहा, अरे पता नहीं किस जन्म का हिसाब किताब है। उस दिन बाबा की मुरली में बड़ी मजेदार बात आई। किसी ने कहा बाबा इसने मेरे को मारा, तो बाबा ने कहा बच्चे तुमने भी जरूर किसी जन्म में इसको मारा होगा। है ना, एक मुरली में आया था भाई, पति ने मुझे मारा ऐसे कहा, तो पति ने मारा तो तुमने भी कभी उसको मारा होगा, तभी तो उसने मारा ना, नहीं तो क्यों मारता। ये कर्मों का हिसाब किताब चुप तो हो गया, पर आपको मैं फिर भी और मारूं, 10 मारूं, ये मारूं। कल मार खाने की बात आई थी, कल ही थी ना, मारने की भी बात थी ना युगल के बीच में, मुरली सुनी होगी ना आपने, पति ने कैसे पत्नी को मारा। तो मैंने ऐसे क्लास में पूछा कि ऐसे भी कोई है जो पति ने भी मार खाई हो, पत्नियां बिचारी तो बहुत मार खाई होगी। हाँ माताएं बताओ जिन्होंने अपने मार खाई, हाथ उठाओ माताएं जिन्होंने मार खाई अपने पति की, कोई नहीं है यहाँ। जरूर है, जरूर निकलेंगे। देखो जिन्होंने पवित्र, क्योंकि पवित्रता के कारण मार जरूर खाई होगी, इतना सहज नहीं है। परंतु फिर मैंने भाइयों से पूछा कि आप लोगों भी बताओ, आप में से कोई है जिसने अपनी पत्नी की मार खाई हो, तो 2-3 ने हाथ उठाया। 2-3 ने हाथ उठाया, पति की मार खाई हो, पत्नी की मार खाई है। तो मैंने कहा वो तो सूप नखा और पूतना जैसी होगी। जो पत्नी ऐसी होगी ना जो पति को भी मारे, तो सूप नखा और पूतना का ही काम है। लेकिन है तो उस समय मुझे याद आया मेरा बचपन का किस्सा। मैं छोटी थी तो मैं तो सेंटर पर जाती थी, छिप छिप कर जाती थी, बंधन था बहुत हमें। तो क्या हुआ कि एक दिन वो मेरे भाई ने मुझे देख लिया, मैं सेंटर से आ रही थी, तो जैसे मैं घर आई तो मुझे बहुत मारा। मैं समझो 13 साल की होंगी, तो सेंटर पर तो जाती थी, सेंटर पर जाती थी फिर स्कूल जाती थी, फिर शाम को भी स्कूल से आती थी, सेंटर और स्कूल नजदीक था, घर भी नजदीक था, तो फिर मैं सेंटर पर जाती थी और फिर घर आती थी। तो मुझे उसने मारा और उसी दिन बाबा की मुरली में हमने सुना, बाबा की मुरली में आया कि पवित्र कन्याओं पर हाथ चलाना ये बहुत बड़ा पाप है। अरे नवरात्रियों में तो पवित्र कन्याओं की पूजा होती है, देवियों की पूजा होती है, और यहाँ एक पवित्र कन्या पर हाथ चलाना ये कितना बड़ा पाप है। तो मुरली सुन के आई थी, तो जब मैं घर आई तो भाई ने मुझे मारा, तुम वहां क्यों गई, तुमको मना किया नहीं जाना है। तो मैंने भी, मुझे भी जोश आ गया, मैंने कहा चल पापी कहीं का चल पापी कहीं का, अपने पवित्र कन्या पर हाथ चलाया है, आपके ऊपर बहुत पाप चढ़ेगा। तो बेचारा इतना घबरा गया, इतना डर गया उसके बाद कभी हाथ नहीं चलाया। तो मेरी माँ ने कहा क्यों हाथ चलाया, चलो गई, इसमें क्या है। तो क्योंकि पढ़ने में भी होशियार थी, सब अच्छा ही था, लेकिन अच्छा लगता था। मेरी माँ भी जाती थी, तो माँ जाती थी तो माँ के साथ ही मैं गई थी, वही मुझे ज्ञान में ले कर आई। तो कहने का भाव है, उस समय तो मैंने कह दिया, लेकिन उसने सबक सीख लिया, फिर कभी नहीं कहा। और फिर तो इतना उसका प्यार था, वो अमेरिका गया, मुझे कह आप अमेरिका आओ, मैंने कहा अमेरिका नहीं आना है, वहाँ माया है, माया है। लेकिन यदि कहने का भाव है कि आखिर तो हमें नम्रता ही सफलता दिलाएगी ना, उस समय तो हमने भी कह दिया, परंतु आखिरकार हम सदा तो ऐसे नहीं रहेंगे ना, घर में रहना है, परिवार में रहना है, कुछ ऐसा बोल दिया, कुछ कर दिया तो क्या होता है, इसका परिणाम तो कोई सही अच्छा तो नहीं होगा ना। घर स्वर्ग बनाना है तो कुछ झुकना भी पड़ेगा, उसके लिए हमें कुछ मरना भी पड़ेगा। तो नम्रता ही महानता है, नम्रता से बहुत सफलता मिलती है। और कई बार कहते छोड़ो तो छूटो, छोड़ो तो छूटो। हम मिसाल देते हैं ना कि एक पंछी है, वो डाली को पकड़ के रखा है, उसने पकड़ के रखा है और वो देख रहा है दूसरे पक्षी उड़ रहे हैं, इतना मौज कर रहे हैं, और मैं डाली को पकड़ फड़फड़ा रहा है अपने पंख, लेकिन उड़ नहीं रहा है। क्यों नहीं उड़ रहा है, क्योंकि डाली को पकड़ के रखा है। तो उसने कहा मैं भी उड़ू, मैं भी उड़ू। तो दूसरे पक्षी कहते कैसे उड़ोगे तुम, डाली को छोड़ो तो उड़ो ना, छोड़ो तो उड़ो ना, छोड़ेगा नहीं और पकड़ के रखा है, मैं उड़ू, मैं उड़ू, मैं उड़ू। तो इसीलिए बाबा कई बार कहते हैं बदल के दिखाओ, बदला मत लो, चलो किसने कुछ कर दिया, बदला मत लो, बदल के दिखाओ, खुद बदलो। दूसरे का बदला लेंगे तो ये 100 गुना दंड चढ़ जाएगा, क्या पता किस जन्म का कौन सा कर्मों का हिसाब किताब है। इसलिए छोड़ो, छोड़ो तो छूटो। तो हम उस चित्र दिखाते हैं, छोड़ो तो छूटो, लेट गो। फिर कहते लेट गॉड, गॉड के ऊपर छोड़ दो, भगवान के ऊपर छोड़ दो, वो जानता है क्या किस जन्म का कौन सा कर्मों का हिसाब किताब है। तो इसलिए न पकड़ के रखो न बदला लो, क्षमा करो और भूल जाओ। ये क्षमा करो और भूल जाओ ये तब संभव होगा जब हमारे अंदर वो नम्रता होगी। मुझे कोई ऐसा कर्म नहीं करना है जो पाप का खाता बने। चलो उसने मुझे कुछ कहा, दो गाली दी, दो बुरा कहा, पर मैं 4 न दूं। अच्छा दो शब्द का कहाँ लगा, कहाँ लगा, वो तो एक कान से सुना दूसरे कान से निकल गया। पर मान लो वो 2 का 4 2 4 सुनाता रहता है, तो फिर तो कई, आज भी एक बहन आई मेरे पास पांडव भवन में, मैं निकल रही थी, कहती बहन जी एक बात मेरी प्रॉब्लम सुनो। मैंने कहा भाई क्या बात है, तो कहती ऐसे ऐसे है और वो कोई हमारे ऊपर जादू टोना कर रहे, पता नहीं क्या क्या बोलती रही, तो हम क्या करें। तो हमने कहा तुम अपनी जगह बदल दो, तुम अपना मकान बदली कर दो, और क्या करेंगे। अब जादू टोना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो तुम बदल जाओ, और तो कोई रास्ता ही नहीं है। हम दो का चार उनको सुनाएंगे तो फायदा तो कुछ भी नहीं है। तुम अपने आप को बदल दो, बस छोड़ो तो छूटो, क्या पता किस जन्म का कौन सा कर्मों का हिसाब किताब है। अब मेरी माँ को परेशान कर रहे, इनको करते, तो फिर माँ को अपने पास बुला लो, क्योंकि पिता ने शरीर छोड़ा उसके बाद माँ को बहुत कष्ट मिला, तो फिर अभी ये तो ससुराल में, तो फिर चलो कोई बात नहीं, माँ को अपने पास बुला लो, इसमें क्या है। माँ दुखी है तो उसको परेशान भी है, बता नहीं क्या क्या कई बातें परिस्थिति परिवारों में क्या क्या नहीं होता, तो उसका सोल्यूशन क्या है। उसका हर जैसे ताले की चाबी होती है, ताले की चाबी होती है, उस चाबी से ही वो ताला खुलेगा। तो इसीलिए अपने आप को बदलना, वो सोल्यूशन निकालना है। मान लो किसने मुझे दो गाली दी, अब मैं चार न दूं, मैं एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल दूंगी, इसको कहते सहन शक्ति। परंतु मान लो वो ज्यादा कर रहा है, तो उस समय क्या सोचो, क्या सोचो, वावन एक बार का उस समय सोचो, ये नाटक कर रहा है, ये नाटक चल रहा है, खेल चल रहा है, खेल चल रहा है ना। अभी कोई रावण का पाठ बजा रहा है और उस समय उसको जोर जोर से हंसना है और एकदम चिल्लाना है राम के ऊपर, तो हम कहेंगे ये रावण ऐसे क्यों कर, खेल है ना। हमारे पास अरविंद त्रिवेदी जो जिसने रावण का पाठ बजाया था ना, वो आया था शिविर करने, जैसे आप बट्टी कर रहे हो, वो ऐसे बैठकर शिविर कर रहा था, अहमदाबाद में रहता था। तो मतलब राम, परंतु इतना शिव भक्त, वो इतना भक्ति करता था, पर रावण का उसको पाठ मिला, अरविंद त्रिवेदी उसका नाम था। तो कई लोग उनसे पूछते थे कि आप इतने अच्छे व्यक्ति, इतने गुणवान व्यक्ति, कितना नाम है आपका समाज में, आपने ये रावण का रोल क्यों किया। तो रावण का रोल करने के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया, ऐसे लोगों ने पूछा। उसने अपना अनुभव सुनाया कि लोग मेरे से कहने लगे आपके जीवन में परिवर्तन क्या आया। तो उसने कहा मेरे जीवन में तो कोई परिवर्तन नहीं आया, मैं तो राम भक्त हूँ, लेकिन मैं एक्टर भी हूँ, तो ये पार्ट मुझे मिला था, लेकिन मेरे बच्चों के जीवन में बहुत परिवर्तन आ गया, बच्चे मेरे। तो क्या परिवर्तन आया कि लोग अब मेरे बच्चों को चिढ़ाते हैं, चल रावण का बच्चा चल रावण का बच्चा, तो रावण का बच्चा कह करके उनको चिढ़ाते, तो मेरे बच्चे कहते हैं पिताजी आपने ऐसा रोल बजाया ही क्यों, ये रोल बजाया ना। तो अगर कोई ऐसा व्यवहार कर रहा है तो उस समय आप क्या करेंगे, आप तो यही कहेंगे ना इसका ये रोल है, बस रोल बजा रहा है, इस समय इसका ये रोल है ड्रामा के अंदर, रावण का रोल। तो हम क्या कर सकते हैं, हम वो रावण का रोल बजा, मैं भी रावण बन जाऊं क्या, नहीं ना। फिर मान लो और कर रहा है, और कर रहा है, फिर तीसरा उपाय क्या, डोज को बढ़ाना होगा ना। फिर उस समय आप क्या करना, कोई किस जन्म का हिसाब किताब है, इस जन्म का नहीं, क्योंकि कई कहते हैं बहन जी हमने तो उसको कोई दुख नहीं दिया, बहन जी हमने तो कुछ किया ही नहीं, ये क्यों मेरे साथ ऐसे कर रहा है। इस जन्म का हिसाब किताब नहीं होगा, पता नहीं किस जन्म का हिसाब किताब है, इसीलिए वो जन्म का हिसाब किताब चुप्त हो गया, ये समझो, इसलिए छोड़ो तो छूटो। पर मान लीजिए वो और कर रहा है, और ज्यादा कर रहा है, तो उस समय क्या करो, उस समय क्या करो, उस पर दया करो, दया आएगी इस पर, ये व्यक्ति ऐसा बुरा क्या क्या बोल रहा है और मैं दया करूं, कैसे दया कर सकता हूं। लेकिन किस प्रकार से दया करो, उन पर ये सोचो कि ये व्यक्ति बड़ा दुखी है, क्योंकि जो दुखी व्यक्ति होगा ना वो ही ऐसे करेगा, अंदर में उसको बहुत दुख है, तो मुझे उसको शांति देनी है, क्योंकि मैं दाता हूं ना, परोपकार करना है, अपकार नहीं करना है, परोपकार करना है, इसको शांति देनी है। इसलिए बाबा कहते वाइब्रेशंस दो, वाइब्रेशंस दो, पॉजिटिव वाइब्रेशंस दो, कि ये भी बदल जाए, ये भी बदल जाए, हाँ बदल जाए, ये बदल जाए, और बदला हुआ है ये समझो, ये नहीं कि ये तो फिर ऐसे आगे ऐसे करेगा, फिर ये करेगा, क्योंकि आपके नेगेटिव वाइब्रेशंस उसको पहुंचेंगे तो वो नेगेटिव ही रहेगा। क्या आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेज सकते हो उनको? यही कहते हैं ना। तो इसीलिए उसका दोष नहीं है, वो अंदर में बहुत दुखी आत्मा है, उनको मुझे शक्ति देनी है, वो कमजोर आत्मा है। तो कमजोर को तो शक्ति देनी होती है या कमजोर को और गिराना होता है? बस ये अंदर में संकल्प आया, आपके अंदर सहन शक्ति आ जाएगी, आपके अंदर नम्रता आएगी, और उस समय तो कभी सामने सामने जवाब नहीं दो। वो तो आग में जल रहा है, मान लो अब आग में तेल डालेंगे क्या? उस समय चुप हो जाओ, ऐसे चुप, और फिर जब थोड़ा वो शांत हो जाए, फिर नम्रता से उनको अपनी बात कहो। मना थोड़ी है, कहना मना नहीं है, लेकिन कैसे कहो? इसको बाबा कहते रिएक्ट नहीं करो, रेस्पॉन्ड करो। पर ये तब होगा जब हमारे अंदर नम्रता होगी, हमारे अंदर सबके गुणों को देखने की विशेषता होगी। नकारात्मक देखना बहुत सहज है, अशुद्ध सोचना, अशुद्ध बोलना वो बहुत सहज है, पर शुद्ध बोलना, शुभ बोलना, समर्थ बोलना, उसमें आत्मा की शक्ति चाहिए। इसलिए क्या करना है? नम्रता लानी है। कुछ भी हो जाए मुझे अभिमान नहीं दिखाना है, मुझे नम्र बनना है, सूखे बांस की लकड़ी की तरह नहीं बनना है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, तुम जीते हमारे। दादी जी हमेशा कहते थे ये हारमोनी हॉल बना ना, तो ये नाम बहुत अच्छा दादी को लगा, हारमोनी। तो दादी कहती थी हारमोनी माना हार मानी झगड़ा टूटा, हारमोनी हारमोनी तो इंग्लिश शब्द है, हारमोनी माना एकता, मिलकर के करना, हारमोनी करना। तो हार मांडो झगड़ा टूटा, चलो ठीक है भाई भूल हो गई, सॉरी माफ कर दो। सॉरी करने में क्या जाता है? पर ये नहीं सॉरी किया बार बार फिर वही करना है हमको। चलो तो इसीलिए ये नम्रता का गुण कैसे महान बनाता है, लोग महसूस करेंगे कि इनके अंदर कितनी सहन शक्ति है। पर हमने भी दो का चार सुना दिया तो सहन शक्ति का गुण थोड़ी गायन होगा। पर सहन शक्ति का मतलब ये थोड़ी है कि मुझे किसने कुछ कह दिया फीलिंग आ गई, किसने कुछ कह दिया मैं नाराज हो गई, चलो मुख से सामने नहीं कहा, नाराज तो हो गई। तो नाराज होना भी क्रोध का ही एक रूप है, फीलिंग आना ये भी फ्लू की बीमारी है, जिसको बाबा छुई मुई कहते हैं, हाथ लगाया झुक गया, हाँ फीलिंग आ गई, अंदर में सोचते क्यों कहा, चलो सामने जवाब नहीं दिया, सामने रोए नहीं लेकिन कमरे में जा करके आंखें आंसू आए और तकिया सिर पर रख दिया, अंदर में रो लिया। क्यों रोना है? इसीलिए बाबा कहते शिव शक्ति बनो, शेरनी शक्ति बनो। तुम कौन हो? शिव शक्ति सेना, आज भी बाबा ने कहा ना शिव की सेना हो। वो शिव सेना केवल वो पार्टी नहीं, पॉलिटिकल पार्टी तुम शिव की शक्तियां हो, सब हो शक्तियां, भाई भी हो ना, कि खाली बहन ही है, भाई भी हो या नहीं? बिल्कुल है, शिव शक्ति पांडव सेना। तो घबराते नहीं है, माया से हारना नहीं है, माया को जीतना है। ये सब माया के विभिन्न रूप है, माया वार करने बहुत आएगी, उनके ग्राहक छूट रहे हैं, इसीलिए माया से बच के रहना है। ये खास अपने अंदर ऐसी धारणा, उसके लिए नम्र बन जाओ, झुक जाओ। एक बहुत अच्छा मिसाल देते हैं, एक ब्रिज थी, छोटी सी साकड़ी ब्रिज थी, उसमें एक ही व्यक्ति जा सकता था। अब दो बकरियां आई, हाँ एक मिसाल देते हैं, इस तरफ भी बकरी आई, दूसरे तरफ भी बकरी आई। अब वो दोनों बकरियां बीच में आके इकट्ठी हो गई, अब वो कहे मैं जाऊं, वो कहे मैं जाऊं, अब किस कौन आगे जाए, क्योंकि एक ही जा सकती थी, एक ही क्रॉस कर सकती थी। तो उसका सोल्यूशन क्या था? कर तो एक ही सकती थी ना क्रॉस, तो कैसे उसने कैसे दो तो मिलेगी तभी तो क्रॉस होगा ना, तो दो नहीं मिल सकती थी, एक ही जा सकती थी। तो कैसे क्रॉस किया, कैसे क्रॉस किया? हाँ, एक झुक गई, एक झुक गई और दूसरे ने कूदा और हो गई क्रॉस, और फिर वो चल पड़ी क्योंकि एक झुकी, तो एक झुकी दूसरे ने क्रॉस कर लिया, तो दोनों ही पार हो गए। पर एक कहे मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों झुकूं, तो क्या होगा, वहीं लड़ते रहेंगे, दोनों गिर जाएंगे पानी में, क्योंकि वो पुल के ऊपर था, वो ब्रिज थी एक ही व्यक्ति के लिए, तो दोनों ही नीचे गए ना पानी में, क्योंकि दोनों सोचे मैं क्यों झुकूं, मैं। इसलिए बाबा कहते जब भी मैं शब्द कहो तो क्या कहो, मैं आत्मा, मेरा मेरा कहो, मेरा बाबा, बस बाबा सबसे प्यारा है। मैं आत्मा अपने आप को प्यार करूं, क्यों नहीं करूं, पर अभिमान वश प्यार थोड़ी होता है, वो तो अभिमान है। इसीलिए नम्रता ही महानता है, ये सदा याद रखें। छोड़ो तो छूटो, क्षमा करो और भूल जाओ। अच्छा, ओम शांति।